एकत्र ज्ञान गोष्ठी। आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट।
और मैं हूं आपका साथी होस्ट।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जॉन स्टेनबेक की ट्रेवल्स विद चार्ली इन सर्च ऑफ अमेरिका।
हाँ, ट्रेवल्स विद चार्ली।
सोचिए, 1960 का दशक, अमेरिका के इतने बड़े लेखक, और वो ये जानने निकल पड़े कि भाई उनका अपना देश आखिर है कैसा।
बिल्कुल। और अकेले नहीं, उनके साथ थे उनके वफादार पूडल चार्ली।
चार्ली, हाँ।
और उनका चलता फिरता घर एक खास ट्रक रोसिनांटे। तो ये किताब सिर्फ एक रोड ट्रिप का किस्सा नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है।
ये एक लेखक की अपने ही देश की आत्मा को टटोलने की कोशिश है। सवाल बहुत सीधा सा था, आज के अमेरिकी असल में हैं कैसे।
और कमाल की बात यह है कि ये सवाल आज भी उतना ही मौजू लगता है ना।
बिल्कुल। पहचान की तलाश, ये जो बदलाव आ रहे हैं उनमें अपनी जगह ढूंढना।
हाँ, और एक इतने बड़े, इतने मिले जुले देश को समझना, ये बातें तो हर जगह हर वक्त मायने रखती हैं।
सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर स्टेनबेक और चार्ली के साथ।
सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए, जॉन स्टेनबेक।
हाँ जरूर। देखिए, जब स्टेनबेक ने ये यात्रा की, वो कोई नए लेखक नहीं थे, वो अपने पीक पर थे।
पीक पर थे, बिल्कुल।
1962 में जिस साल ये किताब छपी, उसी साल उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला।
अरे, नोबेल पुरस्कार।
हाँ, और उससे पहले ही वो द ग्रेप्स ऑफ रैथ जैसी किताब लिख चुके थे। कालजयी रचना मानी जाती है वो,
जिसमें उन्होंने अमेरिकी किसानों का दर्द, उनका विस्थापन, उनका सफर, उफ, बहुत गहराई से दिखाया था।
बिल्कुल। तो वो आम आदमी, जो मजदूर है, जो जमीन से जुड़ा है, उसकी नब्ज पहचानते थे।
और शायद यही बात इस किताब को खास बनाती है। वो सिर्फ एक टूरिस्ट की तरह नहीं घूम रहे थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक जाने माने लेखक थे जिनकी अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने की एक छटपटाहट थी।
हाँ।
और उस नजर से वो अमेरिका को देख रहे थे।
हाँ, उनकी खासियत ही थी गहरी सहानुभूति और पैनी नजर। इस यात्रा में उनका जो रुतबा था, उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी, उसने उन्हें एक बहुत ही अनोखा नजरिया दिया। वो एक तरह से अपनी देश में एक जाने पहचाने अजनबी जैसे थे,
जो फिर से तार जोड़ने निकले थे।
हाँ,
क्या बात है।
तो इस किताब का मूल आइडिया क्या है? एक इतना कामयाब लेखक जिसे दुनिया जानती है।
हाँ।
और उसे अचानक लगता है कि अरे, मैं तो उस अमेरिका को जानता ही नहीं जिसके बारे में मैंने इतना लिखा है।
एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि उनका ज्ञान शायद अब सिर्फ किताबों तक रह गया है, असलियत से कट गया है।
तो फिर क्या किया उन्होंने?
तो उन्होंने खास कैंपर ट्रक बनवाया, बड़ा सोच समझ के। नाम रखा रोसिनांटे।
रोसिनांटे, डॉन क्विक्सोट के घोड़े के नाम पर।
हाँ, जैसे वो खुद भी एक किस्म की आदर्शवादी खोज पर निकल रहे हों।
दिलचस्प। और साथ ही बनाया अपने बड़े समझदार फ्रेंच पूडल चार्ली को। कहते हैं चार्ली अक्सर लोगों से बात शुरू करवाने का जरिया बन जाता था।
अच्छा, चार्ली आइस ब्रेकर थे।
हाँ, कुछ वैसा ही। और मकसद, 3 महीने, लगभग 10,000 मील, पूरे अमेरिका का चक्कर।
और ये भी सुना है कि उन्होंने जानबूझकर बड़े शहर और वो जो नए नए सुपर हाईवे बन रहे थे, उनसे बचने की कोशिश की।
बिल्कुल, उनका प्लान यही था। छोटे कस्बों में रुकना, सड़क किनारे के ढाबों पर खाना, गैस स्टेशनों पर लोगों से मिलना,
आम लोगों से गपशप करना।
हाँ, उनकी बातें सुनना। वो उस अमेरिका को खोजना चाहते थे जो नक्शों और हेडलाइन से परे था।
सही है।
जी हाँ। तो ये किताब एक बाहरी सफर तो है ही, न्यू इंग्लैंड से शुरू होकर मिड वेस्ट, फिर वेस्ट कोस्ट और आखिर में साउथ तक। लेकिन साथ ही साथ ये स्टेनबेक की एक अंदरूनी यात्रा भी है। वो अपनी बढ़ती उम्र, अकेलेपन, पहचान और बदलाव की तेज रफ्तार पर भी लगातार सोचते चलते हैं।
तो चलिए इस यात्रा के कुछ अहम पड़ावों पर और उनसे जो बड़े विचार निकले, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पूरी कहानी तो नहीं सुना सकते, लेकिन
हाँ, जो मुख्य बातें उन्होंने महसूस की।
हाँ, सबसे पहली चीज जो उन्हें बहुत चुभती है, वो है ये आइडिया कि सब कुछ एक जैसा होता जा रहा है, होमोजेनाइजेशन जिसे कहते हैं।
हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे वो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, खासकर मिडवेस्ट में पहुंचते पहुंचते उन्हें ये शिद्दत से महसूस होता है कि अमेरिका अपनी जो क्षेत्रीय पहचान है वो खो रहा है।
कैसे? क्या देखा उन्होंने ऐसा?
वो देखते हैं कि नए सुपर हाईवे बन गए हैं जो पुराने छोटे अनोखे कस्बों को बस बाईपास करके निकल जाते हैं।
अच्छा।
उन्हें लगता है कि शहर एक जैसे दिख रहे हैं, खाना एक जैसा मिल रहा है, यहाँ तक कि लोगों की बातचीत, उनके लहजे में भी एक जैसा पना रहा है।
ओह,
वो इसे इंटरस्टेट माइंड कहते हैं, मतलब एक मानकीकृत सोच जो हर जगह फैल रही है।
ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आजकल हमें हर शहर में लगभग एक जैसे ही मॉल, एक जैसी कॉफी शॉप्स दिखती हैं। शायद कुछ वैसा ही एहसास उन्हें तब हो रहा होगा।
बिल्कुल वैसा ही, कि वो जो स्थानीय रंगत थी वो फीकी पड़ रही है।
हाँ,
उन्हें न्यू इंग्लैंड के वो कम बोलने वाले लेकिन मजबूत किरदारों वाले लोग याद आते हैं, और फिर मिडवेस्ट की ये एकरूपता उन्हें थोड़ी बेचैन करती है। उन्हें लगता है कि रेडियो और टीवी जैसी नई चीजें भाषा और विचारों को भी स्टैंडर्डाइज कर रही हैं, एक जैसा बना रही हैं।
और शायद वो सोच रहे थे कि ये जो प्रगति है, इसकी कीमत क्या हम चुका रहे हैं।
हाँ, ये सवाल उनके मन में जरूर था।
लेकिन इस एकरूपता के बीच क्या उन्हें कुछ अलग, कुछ सुकून देने वाला अनुभव भी मिला कहीं पर?
हाँ हाँ, बिल्कुल। जब वो आगे बढ़ते हैं नॉर्थ डकोटा और मोंटाना के खुले मैदानों में, ऊंचे पहाड़ों के पास पहुंचते हैं, तो उनकी टोन बदल जाती है।
अच्छा।
वो प्रकृति की विशालता, उसकी खूबसूरती से एकदम अभिभूत हो जाते हैं। वो बैडलैंड्स के बारे में लिखते हैं, रॉकी माउंटेन्स के बारे में।
वाह।
ये सब उन्हें शहरों की उस एक रास्ता से बहुत राहत देते हैं। उन्हें लगता है कि प्रकृति ही वो असली अमेरिका है, जो बदला नहीं है, जो कालातीत रह प्रामाणिक है।
और इसी दौरान वो शायद अमेरिकी चरित्र के बारे में भी कुछ सोच रहे थे कि ये लोग हमेशा बेचैन से रहते हैं।
हाँ, ये भी एक बड़ा थीम है। वो देखते हैं कि लोग एक जगह टिकते नहीं आसानी से, हमेशा कहीं और जाने की, कुछ बेहतर पाने की तलाश में रहते हैं। ये बेचैनी, ये एक तरह का असंतोष, उन्हें अमेरिकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा लगता है। शायद इसी बेचैनी ने उन्हें भी सफर पे निकलने को मजबूर किया था।
हाँ, ये हो सकता है। लेकिन फिर यात्रा एक बहुत ही मुश्किल और कहना चाहिए दर्दनाक मोड़ लेती है जब वो अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में पहुंचते हैं, डीप साउथ।
हाँ, वो किताब का सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला हिस्सा है। वो पहुंचते हैं न्यू ऑलियंस, लुइजियाना।
न्यू ऑलियंस, जहां उस वक्त स्कूल इंटीग्रेशन का संकट अपने चरम पर था। मतलब नस्ली आधार पर जो स्कूल अलग अलग थे, उनमें अश्वेत बच्चों को दाखिला दिलाने की कोशिशें हो रही थी,
और उसका जबरदस्त विरोध हो रहा था,
भयंकर विरोध हो रहा था। और वहां स्टेनबेक का सामना होता है चीयरलीडर्स से।
ये नाम सुनने में कितना अजीब है इस कॉन्टेक्स्ट में, चीयरलीडर्स।
नाम बहुत मासूम लगता है, लेकिन असलियत बहुत भयानक थी। ये दरअसल श्वेत महिलाओं का एक झुंड था।
अच्छा।
जो रोज स्कूल के बाहर खड़ा होता था और एक 6 साल की छोटी सी अश्वेत बच्ची रूबी ब्रिजेस उस पर चीख चीख कर नस्ल भेदी गालियां बरसाता था।
6 साल की बच्ची पर, हे भगवान।
सिर्फ इसलिए कि वो एक श्वेत स्कूल में पढ़ने की हिम्मत कर रही थी।
ये पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
स्टेनबेक इस नजारे को देखकर लिखते हैं कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार महसूस करने लगे।
यकीनन, वो लिखते हैं कि ये नफरत एक छूत की बीमारी की तरह है जो पूरे शहर में, पूरे समाज में फैली हुई है। ये उनकी यात्रा का वो पॉइंट था जहां अमेरिका की अच्छाई खोजने निकले लेखक का सामना देश की सबसे गहरी, सबसे बदसूरत सच्चाई से होता है।
अमेरिकी सपने का सबसे काला पहलू।
बिल्कुल।
उन्होंने वहां लोगों से बात भी की होगी, समझने की कोशिश की होगी कि ये नफरत इतनी गहरी क्यों है।
हाँ, उन्होंने कोशिश की, श्वेत लोगों से भी बात की, अश्वेत लोगों से भी, लेकिन उन्हें कोई आसान जवाब नहीं मिला, सिवाय इसके कि ये पूर्वाग्रह बहुत गहरे बैठे हुए थे, पीढ़ियों से चले आ रहे थे।
इस अनुभव ने तो उन्हें पूरी तरह हिला दिया होगा।
बिल्कुल। यहाँ से उनकी वापसी यात्रा शुरू होती है और उसमें एक उदासी सी महसूस होती है। वो थोड़ी जल्दी में भी लगते हैं। वो बस उस देश की जटिलता पर सोचते रह जाते हैं जिसे उन्होंने देखा था, जहां एक तरफ इतनी सुंदरता है, इतनी दयालुता है,
और दूसरी तरफ इतनी कड़वाहट, इतनी क्रूरता।
हाँ, ये विरोधाभास उन्हें बहुत परेशान करता है।
और एक और दिलचस्प मोड़ तब आता है जब वो कैलिफोर्निया पहुंचते हैं, अपने पुराने घर, अपने इलाके में, जिसे स्टेनबेक कंट्री भी कहते हैं, मोंटेरे और सलीनास।
हाँ, वो उनका होम ग्राउंड था। उन्हें लगा होगा कि चलो अब घर पहुंच गए, एक जानी पहचानी जगह।
लेकिन हुआ क्या?
लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि वो वहां भी एक तरह से अजनबी ही हैं।
अरे,
जगहें बदल गई हैं, पुराने लोग या तो चले गए हैं या बदल गए हैं या उन्हें पहचान नहीं रहे। उन्हें थॉमस वुल्फ की वो मशहूर लाइन याद आती है, यू कांट गो होम अगेन,
आप फिर से घर नहीं जा सकते।
हाँ, और ये जो उनका व्यक्तिगत अनुभव था, ये भी उनकी उस बड़ी खोज से जुड़ जाता है कि पहचान क्या है, घर क्या है, ये सब कितने अस्थाई, कितने बदलते रहने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं।
सही बात है। तो कुल मिलाकर इतने लंबे सफर के बाद, इतने अनुभव बटोरने के बाद, स्टेनबेक आखिर किस नतीजे पर पहुंचे? क्या उन्हें वो एक अमेरिका मिला जिसकी तलाश में वो निकले थे?
नहीं, कह सकते हैं कि उन्हें कोई एक ठोस अमेरिका नहीं मिला।
अच्छा।
बल्कि उन्हें कई सारे अमेरिका मिले, अलग अलग, विरोधाभासी, जटिल और लगातार बदलते हुए। उनकी यात्रा किसी सीधे साधे जवाब पर नहीं खत्म होती,
बल्कि
एक गहरे विस्मय और एक अनिश्चितता पर खत्म होती है। शायद सबसे बड़ा सबक उनके लिए यही था कि अमेरिका, या शायद कोई भी बड़ा देश, एक पहेली की तरह है जिसे पूरी तरह कभी समझा नहीं जा सकता।
ये गहरी बात है, और इस किताब में कुछ पंक्तियां, कुछ विचार ऐसे हैं जो वाकई दिमाग में अटक जाते हैं।
हाँ, बहुत है।
जैसे उनका वो कहना, मैं खोया हुआ पैदा हुआ था और पाए जाने में कोई खुशी नहीं लेता।
क्या बात है।
ये उनकी वो बेचैन रूह को दिखाता है ना, कि शायद मंजिल से ज्यादा सफर ही जरूरी है, खोजते रहना ही जीवन है।
बिल्कुल, ठहराव में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। और एक और बात जो वो कहते हैं, हम यात्रा नहीं करते, यात्रा हमें ले जाती है।
हाँ, इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब आप भले ही एक प्लान बनाकर निकलें, सोचें कि आप ये देखेंगे, वो करेंगे, लेकिन रास्ते के जो अनुभव होते हैं, जो लोग मिलते हैं, वो आपको बदल देते हैं। आपको खुद को उस अनुभव के हवाले करना पड़ता है,
कंट्रोल छोड़ना पड़ता है एक तरह से।
हाँ, और ये धीमी गति से ध्यान से देखने की अहमियत पर भी जोर देता है, तेज रफ्तार से बस गुजर जाने के मुकाबले।
जैसे वो कहते हैं कि कार में बैठकर आप देश को सिर्फ देखते हैं सरसरी तौर पर, लेकिन रोसिनांटे जैसी धीमी गाड़ी में आप देश को महसूस करते हैं।
बिल्कुल, और न्यू ऑरलियंस वाले अनुभव पर उनकी वो टिप्पणी भी सोचने पर मजबूर करती है, जो वो कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांडीय इतिहास का एक टुकड़ा देखा।
हाँ,
मतलब जैसे वो इतिहास को बनते हुए देख रहे हों, उसकी सारी मुश्किलों, सारी कुरूपता के साथ। वो जो बदलाव आ रहा था और उसका जो घिनौना प्रतिरोध हो रहा था, वो सब उनकी आंखों के सामने था।
ये सारी बातें, ये सारे विचार, ये हमें आज भी सोचने को मजबूर करते हैं ना?
बिल्कुल करते हैं। जैसे, क्या हम वाकई अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं,
या बस रोजमर्रा की भागदौड़ में वो सुपर हाईवे की तरह जिंदगी से गुजर जाते हैं बिना आसपास देखे?
हाँ, ये किताब एक तरह से उकसाती है कि भाई रुको, देखो, अपने गली मोहल्ले को देखो, अपने शहर को देखो, अपने आसपास के लोगों को जानने की कोशिश करो।
वो इंटरस्टेट वाली मानसिकता से हटो, छोटी गलियों में जाओ, अजनबियों से बात करो, उनकी कहानियां सुनो।
बिल्कुल, और समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ आंख बंद करके स्वीकार मत करो, उन पर सवाल उठाओ, आलोचनात्मक नजर से देखो।
प्रगति के नाम पर क्या खो रहा है? क्या स्थानीय पहचान, भाषा, संस्कृति, क्या इनकी कीमत पर ही विकास होता है?
ये सवाल स्टैनबेक ने 1960 में उठाए थे, और आज भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हैं।
सही कहा, और ये अपनी खुद की पहचान पर सोचने का भी एक मौका देती है।
हाँ,
मेरी पहचान क्या सिर्फ मेरी राष्ट्रीयता है, या मेरे क्षेत्र, मेरे समुदाय, मेरे अपने व्यक्तिगत मूल्यों का भी उसमें बड़ा हिस्सा है? और ये अलग अलग पहचानें कैसे एक साथ रहती हैं, कभी टकराती हैं, कभी मिलती हैं।
और शायद सबसे मुश्किल सबक जो ये किताब देती है, वो है असहज करने वाली सच्चाइयों का सामना करना।
जैसे स्टेनबेक ने न्यू ऑरलियंस में उस भयानक नफरत का सामना किया।
हाँ, वैसे ही हमें भी अपने समाज की जो मुश्किलें हैं, जो अन्याय हैं, उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उनसे जूझना, उन्हें समझना और फिर बदलाव की कोशिश करना, ये जरूरी है।
तो अंत में मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी देश, कोई भी समाज सीधा सपाट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता।
नहीं होता।
उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी, उम्मीद भी है, मायूसी भी, सब कुछ एक साथ मौजूद होता है। और इसी जटिलता को स्वीकार करना शायद समझ की पहली सीढ़ी है।
बहुत अच्छी बात कही। और मेरे लिए सबसे स्थायी बात यह है कि किसी जगह को या लोगों को समझने का सबसे अच्छा, शायद एकमात्र तरीका, उनसे सीधे जुड़ना है, बिना किसी पूर्व धारणा के, खुली आंखों और खुले दिल से। ये किताब हमें याद दिलाती है कि दुनिया को और उसमें अपनी जगह को समझने का ये जो सफर है, ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन ये सफर ही अपने आप में बहुत कीमती है, बहुत सार्थक है। स्टेनबेक ने जो सवाल पूछे थे, वो आज भी हमारे सवाल हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारे दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।